अगर हम किसी प्राचीन इब्रानी पांडुलिपि के व्याकरण को, मेरा मतलब है हिब्रू भाषा को, और अंतरिक्ष के जटिल गणित को एक साथ रख कर देखें तो सतह पर यह कोई बहुत ही बेमेल सा कॉम्बिनेशन लगता है।
हाँ बिल्कुल, ये दोनों विषय एक दूसरे से मीलों दूर महसूस होते हैं,
है ना? एक तरफ हजारों साल पुरानी भाषा की बारीकियां हैं और दूसरी तरफ ब्रह्मांड का एकदम आधुनिक विज्ञान।
लेकिन आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम जो स्रोत लेकर आए हैं वो रॉबर्ट वानोए का ओल्ड टेस्टमेंट के इतिहास पर दिया गया एक लेक्चर है, और ये लेक्चर इन दोनों अलग अलग दुनियाओं को आपस में टकराता है।
बिल्कुल, आज के इस डीप डाइव में हम जेनेसिस अध्याय 2 की गहराइयों में जाने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्राचीन अनुवाद का रहस्य मानव उत्पत्ति के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक गैर ईसाई खगोल वैज्ञानिक डार्विन के विकासवाद पर कुछ ऐसे गणितीय सवाल खड़े करता है जो मतलब विज्ञान की दुनिया को भी असहज कर देते हैं।
हाँ, ये हिस्सा तो मेरा पसंदीदा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत जेनेसिस 2:18 से करते हैं। ये वो जगह है जहां कहा गया है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए एक उपयुक्त मददगार बनाया जाएगा।
एकदम सही, और यहीं पर ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी गलतफहमी होती है।
हाँ, क्योंकि जब भी हम मददगार या अंग्रेजी में हेल्प शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में किसी सहायक या किसी ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो मुख्य व्यक्ति से पदानुक्रम या हायरार्की में नीचे हो,
जैसे कि कोई बॉस और उसका सेक्रेटरी, है ना?
बिल्कुल वैसा ही कुछ।
लेकिन वेनोय अपने व्याख्यान में सबसे पहले इसी बात को साफ करते हैं। वो बताते हैं कि मूल हिब्रानी भाषा में यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसमें गुलामी या कमतर होने का कोई भाव है ही नहीं।
तो फिर उसका असल मतलब क्या है?
अगर हम उस समय के जर्मन लेक्सिकन या व्याकरण को देखें तो इसका सटीक अर्थ निकलता है, एक ऐसा मददगार जो उसके समान और पर्याप्त हो, जिसे हम अंग्रेजी में इक्वल एंड एडिक्वेट कहते हैं।
अरे वाह, ये तो पूरी तरह से अर्थ ही बदल देता है।
हाँ, स्त्री को पुरुष का पूरक बनने के लिए बनाया गया था, उसकी दासी या सेवक बनने के लिए नहीं।
और ये बात जेनेसिस के पहले अध्याय से भी मेल खाती है जहां स्थापित किया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को ईश्वर की छवि में बनाया गया है, यानी दोनों का स्तर पूरी तरह से समान है।
बिल्कुल, दोनों समान हैं। लेकिन इस समानता को समझने से पहले कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है।
आप जानवरों के नामकरण वाली बात कर रहे हैं ना?
हाँ, स्त्री के निर्माण से ठीक पहले आदम को सभी जानवरों का नाम रखने का काम दिया जाता है, और ये महज जानवरों पर कोई टैग या लेबल लगाने जैसी सामान्य प्रक्रिया नहीं थी।
मतलब ये ऐसा नहीं था कि बस किसी फाइल पर नाम लिख दिया जाए?
बिल्कुल नहीं, जानवरों का नामकरण वास्तव में एक गहरी संज्ञानात्मक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया थी। प्राचीन समय में किसी चीज का नाम रखने का मतलब केवल उसे पुकारना नहीं होता था।
तो फिर क्या होता था?
इसका मतलब उसकी वास्तविक प्रकृति, उसकी विशेषताओं, उसके स्वभाव और उसके अंतर को बारीकी से समझना होता था। और जब आदम इन जीवों का गहराई से विश्लेषण कर रहा था तो वह खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीख रहा था।
समझ रही हूँ, इस प्रक्रिया के दौरान उसके भीतर एक आत्म जागरूकता पैदा हो रही होगी।
एकदम सही, उसे यह एहसास होता है कि इन अनगिनत जीवों में से कोई भी उसके जैसा नहीं है।
ये तो कुछ कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई किसी बहुत बड़े ऑनलाइन कैटलॉग में कुछ तलाश रहा हो। आप हजारों पन्ने पलट लेते हैं, हर एक चीज को ध्यान से देखते हैं और अंत में आपको एक खालीपन महसूस होता है।
हाँ बिल्कुल सटीक उदाहरण है
कि जिस चीज की असल में तलाश है वो तो वहाँ है ही नहीं। तो क्या इस पूरी नामकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यही आत्म जागरूकता जगाना था?
लेक्चर इसी तर्क को सामने रखता है। अगर आदम को सीधे ही एक साथी दे दिया जाता तो शायद वो उस समानता और अहमियत को कभी समझ ही नहीं पाता।
मतलब वो उसे ग्रांटेड ले लेता।
हाँ, उसे ये एहसास कराना जरूरी था कि उसे एक ऐसे साथी की आवश्यकता है जो उसी के समान हो, ना कि कोई ऐसा जानवर जिस पर वो महज शासन कर सके।
तो ये अकेलेपन का एहसास उस समान मददगार की कद्र करने की जमीन तैयार कर रहा था। ये वाकई बहुत ही गहरी बात है।
और यहीं से कहानी उस हिस्से पर आती है जिसने सदियों से बड़ी बड़ी बहसों को जन्म दिया है, जेनेसिस 2:21 में, जहां जिक्र आता है कि आदम गहरी नींद में चला जाता है और उसकी पसली से स्त्री का निर्माण होता है।
और मेरे ख्याल से यहीं पर भाषा विज्ञान का वो सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे।
हाँ, इब्रानी भाषा का जो शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है वो है सलाग। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे पुराने नियम में जहां भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है केवल और केवल इसी एक जगह पर, इसका अनुवाद पसली या रिब के रूप में किया गया है।
रुकिए, सच में? मतलब पूरी किताब में सिर्फ एक ही जगह से पसली कहा गया है?
बिल्कुल, सिर्फ इसी जगह, बाकी सभी जगहों पर इसका मतलब पहलू या किनारा होता है। वनोइस के कई ऐतिहासिक उदाहरण भी देते हैं।
जैसे कि कौन से उदाहरण?
जैसे एक्सोडस में आर्क ऑफ द कोवेनेंट के पहलुओं या किनारों की बात की गई है, वहां यही शब्द है। किसी पहाड़ के पहलू के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल हुआ है।
अरे वाह।
और जब राजा सोलोमन के भव्य मंदिर के निर्माण का वर्णन आता है तो वहां देवदार के तख्तों या दीवारों के बड़े हिस्सों के लिए भी सलाह का इस्तेमाल हुआ है।
ये तो बहुत ही अजीब है। यहां मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा प्रतिवाद या कह लिए सवाल आता है।
हाँ बताइए।
अगर इस पूरी प्राचीन पांडुलिपि में हर दूसरी जगह पर इस शब्द का अर्थ पहलू, किनारा या एक बड़ा हिस्सा है, तो अनुवादकों ने इसे अचानक एक छोटी सी हड्डी यानी पसली क्यों बना दिया?
ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है।
क्या ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसे शारीरिक रूप से समझना आसान हो जाए? क्योंकि मनुष्य का एक पूरा पहलू या हिस्सा निकालना थोड़ा अमूर्त लगता है, जबकि पसली निकालना एक साफ सुथरी सर्जिकल प्रक्रिया जैसी तस्वीर पेश करता है।
ये सोचना काफी तार्किक है और अनुवादकों के सामने ये एक वास्तविक चुनौती भी रही होगी। जब इस शब्द का इस्तेमाल लकड़ी के तख्तों या इमारती बीम के लिए हुआ तो उन्होंने शायद इसे मानव शरीर की संरचना से जोड़ने का प्रयास किया।
हाँ, क्योंकि शरीर के ढांचे में पसलियां किसी इमारत की बीम जैसी ही भूमिका निभाती हैं।
एकदम सही। इसलिए पसली एक आसान, दृश्यमान और स्पष्ट अनुवाद लगा। लेकिन वनोए ये स्पष्ट करते हैं कि ये अनुवाद मूल शब्द के व्यापक और गहरे अर्थ को सिकोड़ देता है।
और शायद इसी एक भाषाई निर्णय के कारण दुनिया भर में ये भ्रांति फैल गई। सदियों से ये मजाक बनता आ रहा है कि पुरुषों में एक पसली कम होती है,
मर जाते हैं।
जो कि चिकित्सा विज्ञान के नजरिए से पूरी तरह गलत तथ्य है।
बिल्कुल।
तो फिर वेनोय के अनुसार इसका अधिक सटीक और दार्शनिक अर्थ क्या होना चाहिए था?
उनके अनुसार इसका सही अर्थ यह है कि ईश्वर ने स्त्री का निर्माण मनुष्य के एक पूरे पहलू या उसके एक मूलभूत हिस्से को लेकर किया। ये केवल एक हड्डी के टुकड़े की बात नहीं है।
मतलब पुरुष की आधी संरचना या उसके एक समान हिस्से से दूसरे इंसान का निर्माण?
हाँ, और ये विचार सीधे तौर पर उसी समानता की ओर इशारा करता है जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर रहे थे। दोनों एक ही मूल द्रव्य से बने हैं।
ये पहलू या हिस्सा होने का विचार तो बहुत कुछ बदल देता है। अगर इसे बड़ी तस्वीर में रखकर देखा जाए तो ये मानव जाति की उत्पत्ति और हमारी एकता के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है।
और जेनेसिस 2:23 इसी एकता को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से रेखांकित करता है। जब आदम अपनी गहरी नींद से जागता है और स्त्री को पहली बार देखता है तो उसका वाक्य आम गद्य में नहीं होता।
अच्छा, तो वो कैसे बात करता है?
वो इब्रानी कविता के रूप में सामने आता है। ये मेरी हड्डियों की हड्डी और मांस का मांस है। यहाँ वेनोय दार्शनिक फ्रांसिस शेफर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ देते हैं।
फ्रांसिस शेफर क्या कहते हैं इस बारे में?
शेफरों का तर्क है कि ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य शून्य से या कई अलग अलग जगहों से अचानक प्रकट नहीं हो गया।
यानी मानव जाति की एकता का एक स्पष्ट ऐतिहासिक और वास्तविक आरंभिक बिंदु है।
हम सभी एक ही मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, यही बात शेफर समझाना चाहते हैं। दुनिया भर में दार्शनिक और समाजशास्त्री ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सभी इंसान बुनियादी तौर पर एक हैं।
और शेफर के अनुसार ये प्राचीन पाठ उसी एकता का एक ठोस आधार देता है।
हाँ, चूंकि स्त्री का निर्माण पुरुष से ही हुआ है, इसलिए पुरुष और स्त्री मिलकर एक संपूर्णता का निर्माण करते हैं। ये एकता कोई बाद में बनाया गया सामाजिक नियम नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के आरंभ में ही स्थापित हो गई थी।
और मुझे लगता है कि यही विचार आगे चलकर सीधे विवाह की अवधारणा से जुड़ जाता है ना? जेनेसिस 2:24 कहता है, इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से जुड़ा रहेगा और वे एक तन होंगे। यहां भी व्याख्या को लेकर एक बड़ी दिलचस्प भाषाई बहस देखने को मिलती है। ये आयत वास्तव में आदम का कथन नहीं है, बल्कि उस कथावाचक की टिप्पणी है जो ये पूरी कहानी लिख रहा है।
ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
जॉन कैल्विन जैसे प्रसिद्ध धर्मशास्त्रियों ने इब्रानी व्याकरण का गहराई से विश्लेषण करते हुए इसे एक आदेश माना है। उनके अनुसार इसका अर्थ है कि मनुष्य को विवाह करना ही चाहिए,
एक सख्त नियम की तरह। लेकिन क्या विनोय भी ये मानते हैं?
नहीं, विनोय इस पारंपरिक व्याख्या से अलग राय रखते हैं। वे इसे कोई थोपा गया नियम नहीं मानते, बल्कि एक तथ्य का स्पष्टीकरण कहना ज्यादा सही समझते हैं।
तथ्य का स्पष्टीकरण मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है?
हाँ, उनका मानना है कि ये आयत वास्तव में इस बात की व्याख्या कर रही है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से विवाह में एकता क्यों खोजता है।
क्योंकि स्त्री मूल रूप से पुरुष के ही एक हिस्से से बनी थी, इसलिए विवाह में वो मूल एकता फिर से स्थापित होती है।
बिल्कुल, वो खोई हुई पूर्णता वापस मिल जाती है।
ये बहुत ही गहरा और दार्शनिक विचार है। ये बताता है कि विवाह केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं है, बल्कि मनुष्य की उस पूर्णता को वापस पाने की स्वाभाविक ललक है।
और ये एक तन होने का विचार शारीरिक या यौन संबंध तक सीमित नहीं है।
हाँ, क्योंकि एक संपूर्णता के लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए होता है।
बिल्कुल। लेक्चर पहले कोरिंथियंस 6:16 का संदर्भ देते हुए बताता है कि शारीरिक मिलन इस एकता का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जुड़ाव भी आवश्यक है।
जहाँ दो लोग एक दूसरे पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि वे एक इकाई बन जाते हैं।
और इसी बहुआयामी एकता के कारण वेनॉय तर्क देते हैं कि एक विवाह या मोनोगैमी आवश्यक है, क्योंकि ऐसी पूर्णता केवल दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है।
मानव उत्पत्ति और इस डिजाइन के विचार को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
कौन सा सवाल?
अगर ये प्राचीन पाठ ये संकेत देता है कि हमें एक दूसरे के पूरक के रूप में जानबूझकर डिजाइन किया गया था, तो ये विचार आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से डार्विन के मैक्रो इवोल्यूशन के साथ कैसे टिक सकता है,
जहां सब कुछ एक अंधे रैंडम संयोग का परिणाम माना जाता है।
हाँ बिल्कुल।
लेक्चर स्पष्ट रूप से यह दावा करता है कि ये दोनों विचार एक साथ नहीं चल सकते। मैक्रो इवोल्यूशन पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों और रैंडम म्यूटेशन पर निर्भर करता है।
और वेनॉय इसे जेनेसिस के उद्देश्यपूर्ण वृत्तांत के बिल्कुल विपरीत मानते हैं। यहाँ मैं श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि हम इस चर्चा में ये तय नहीं कर रहे कि विकासवाद सही है या गलत।
हाँ, हम किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे।
बिल्कुल, हम निष्पक्ष रूप से केवल उन बातों और तर्कों पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो वेनॉय के लेक्चर में दिए गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लेक्चर में विकासवाद का विरोध केवल धार्मिक आधार पर नहीं किया जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान और गणित के कठोर आंकड़ों के माध्यम से किया जा रहा है, और ये इस व्याख्यान का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है।
हाँ, मैंने स्रोत में देखा कि उन्होंने किसी फ्रेड हॉयल का जिक्र किया है।
सर फ्रेड हॉयल पिछले कुछ दशकों में कई गैर ईसाई और अत्यधिक सम्मानित वैज्ञानिकों ने डार्विन के सिद्धांत पर गंभीर सवाल उठाए हैं, और हॉयल उनमें से एक प्रमुख नाम है।
तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं, है ना?
हाँ, उन्होंने 1981 में एवोल्यूशन फ्रॉम स्पेस नामक एक पुस्तक लिखी थी। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, और उनका अध्ययन विशुद्ध गणित और संभावनाओं पर आधारित है।
तो अंतरिक्ष और तारों का अध्ययन करने वाला एक वैज्ञानिक जीव विज्ञान के गणित में खामियां निकाल रहा है।
बिल्कुल, हॉयल का गणितीय विश्लेषण मुख्य रूप से उस प्रारंभिक सूप की अवधारणा पर प्रहार करता है।
अच्छा, वो आदिम रसायन जिससे माना जाता है कि पृथ्वी पर रैंडम तरीके से जीवन की शुरुआत हुई।
हाँ, हॉयल ने गणना की कि जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी और जटिल एंजाइमों के सिर्फ रैंडम संयोग से एक साथ बनने की संभावना कितनी है।
और वो संभावना क्या है?
वो है 10^40 में एक।
10^40 यानी एक के बाद पूरे 40 शून्य। ये संख्या तो इतनी बड़ी है कि इसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है।
ये ब्रह्मांड में मौजूद कुल परमाणुओं की संख्या को भी टक्कर दे सकती है। हॉयल का निष्कर्ष यही है कि ये संभावना इतनी ज्यादा सूक्ष्म है कि डार्विन के सिद्धांत को सच मानना गणितीय रूप से पूरी तरह बकवास है।
ये तो बहुत ही कड़ा शब्द है।
हाँ, उन्होंने इसे एब्सर्ड कहा है। उनके अनुसार जीवन के लिए जरूरी बायोमोलिक्यूल्स इतने जटिल होते हैं कि उन्हें बनाने के लिए किसी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस के स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता है।
भले ही हॉयल उस बुद्धिमत्ता को ईश्वर ना कहें, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जटिलता सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकती।
एकदम सही। इस लेक्चर में कंप्यूटर का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है।
हाँ, वो बग्स वाला उदाहरण। अगर किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में रैंडम गलतियां डाल दी जाएं, तो क्या वो कंप्यूटर अचानक से अपने आप को अपग्रेड करके एक बेहतर मशीन बन जाएगा?
कभी नहीं। रैंडम गलतियों से प्रोग्राम बेहतर नहीं होगा, बल्कि वो क्रैश हो जाएगा।
लेक्चर यही तर्क देता है कि रैंडम म्यूटेशन से अचानक जटिल जीवन का निर्माण नहीं हो सकता।
लेकिन अगर ये गणित इतना स्पष्ट है, तो विज्ञान की मुख्य धारा में इस पर खुली बहस क्यों नहीं होती?
लेक्चर यहाँ चुप्पी की दीवार का एक बहुत ही चिंताजनक विषय उठाता है।
ये अकादमिक दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। कार्ल हेनरी की किताब का संदर्भ देते हुए यह बताया गया है कि वैज्ञानिक समुदाय में एक तरह की सामाजिक स्वीकार्यता हावी हो रही है।
मतलब डार्विनवाद अब सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक पूरी अकादमिक व्यवस्था बन चुका है।
बिल्कुल। लोग पुराने सिद्धांतों से सिर्फ इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि उसे चुनौती देने का मतलब है अपने करियर और प्रतिष्ठा को खतरे में डालना। जब कोई वैज्ञानिक ऐसे प्रमाण लाता है तो उसे चुप करा दिया जाता है,
निकाल दिया जाता हो।
हाँ, ये दिखाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में भी कभी कभी स्थापित धारणाओं का संरक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
आज की इस पूरी चर्चा ने वाकई कई अलग अलग दिशाओं में सोचने पर मजबूर किया है। इब्रानी भाषा के एक शब्द से लेकर 10^40 के उस अकल्पनीय गणित तक,
ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि दुनिया को केवल एक ही चश्मे से देखना कभी भी पर्याप्त नहीं होता। अनुवादों और स्थापित वैज्ञानिक मान्यताओं दोनों पर सवाल उठाना जरूरी है।
बिल्कुल, आलोचनात्मक सोच का असली मतलब ही यही है कि उन धारणाओं की जांच की जाए जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। तो जाते जाते आज की इस चर्चा से एक गहरा विचार सामने आता है।
वो क्या?
मैं सोच रही थी, अगर सर फ्रेड हॉयल का गणित सही है और हमारे डीएनए की ये जटिलता किसी रैंडम चांस का नतीजा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी बुद्धिमत्ता छिपी है, तो क्या ये सोचने का नजरिया नहीं बदल देता?
किस बारे में?
हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में। वे घटनाएं जिन्हें हम महज एक इत्तेफाक मानकर खारिज कर देते हैं, अगर ब्रह्मांड के सबसे छोटे जैविक कणों में इतना बड़ा और जटिल डिजाइन छिपा है, तो क्या ये संभव नहीं कि वो छोटे छोटे इत्तेफाक भी किसी बहुत बड़े अनदेखे डिजाइन का ही एक हिस्सा हों?
ये तो वाकई सोचने वाली बात है,
है ना?
जरा इस बारे में सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।